आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास 10th के साइंस का 4th चैप्टर है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास का टॉपिक था विल यू बी माई फ्रेंड, इट वॉज फॉर कार्बन। कार्बन के लिए बात कर रहे थे हम लोग कि कार्बन जो होता है वो काफी सारे एलिमेंट्स के साथ अटैच होकर के कंपाउंड्स बनाता है, जिसमें ज्यादातर जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, बाकी के बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, सच एज हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन सभी के साथ बॉन्डिंग करके कार्बन अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। और इसमें जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन्स को रिमूव करके जितने भी नंबर रिक्वायर्ड है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के हिसाब से हम हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं और दूसरे एलिमेंट को अटैच करते हैं। मान लीजिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन को अटैच कराना है डायरेक्टली, तो हमें क्या करना होगा, हमें दो हाइड्रोजन्स रिमूव करने पड़ेंगे एक हाइड्रोकार्बन्स में से, और सी ओ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन से अटैच करना होगा डायरेक्टली, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना होगा, तो वहां ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है या फिर अलग तरीके के बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना होता है कि वहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जनरल वैलेंसी जो है नाइट्रोजन की वो 3 है तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सी और ओ के बीच में अगर वो दोनों डायरेक्टली अटैच हो तो डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन ये एक ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हमेशा यही मान करके चलना है। अगर केवल और केवल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है तब ये बात सच है कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, तभी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी कार्बन की भी और ऑक्सीजन की भी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो उस केस में सिंगल बॉन्ड बनेंगे। फिर से सुनो, मैंने कहा कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हो और किसी और से नहीं अटैच्ड हो, जस्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन अटैच्ड है और ऑक्सीजन फर्दर किसी और से नहीं अटैच्ड है, अकेला ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो उस केस में वहां डबल बॉन्ड बनेगा, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो किसी और के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है कार्बन के साथ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन जब भी अटैच्ड होंगे तो वहां पर केवल डबल बॉन्ड ही बनेगा। मैंने ऐसा कहा कि अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से और किसी और एटम से या एलिमेंट से फर्दर वो अटैच नहीं है, अकेला अटैच है, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है प्लस किसी और एटम से भी वो अटैच है, तो ऑक्सीजन की मोस्टली डाइवेलेंट नेचर होता है उसका, वो 2 वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करने के लिए 2 सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो यहाँ पर वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी है उसको पूरा करने के लिए वो 2 सिंगल बॉन्ड या फिर 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जब भी ऑक्सीजन और कार्बन को अटैच करेंगे तो आप ये बातें ध्यान में रखेंगे कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, इसी तरीके से नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए तो कार्बन की 4 पूरी होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन भी अलग अलग तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, या तो नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, या 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तीनों के तरीके से वो क्या कर रहा है, अपनी 3 जो वैलेंसी है उसकी वो पूरी कर पा रहा है, राइट। तो आप ये बात जो है, जो डाउट्स आपके आते हैं उसको दिमाग में थोड़ा क्लियर करते रहिएगा टाइम के टाइम पे। नेक्स्ट हमने ये भी बात की थी कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन्स को रिमूव करके दूसरे एलिमेंट्स जब अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन में तो उन्हें हेटेरो एटम कहा जाता है। हेटेरो एटम्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं। टेबल 4.3 में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन से अलग है, जब वो अटैच होगा कहीं पर भी तो उसे एक हेटेरो एटम कहा जाएगा। सिमिलरली हैलोजन्स को भी हेटेरो एटम कहा जाएगा, नाइट्रोजन को भी कहा जाएगा, सल्फर को भी कहा जाएगा। हाइड्रोजन से अलग जो भी एलिमेंट्स है उन्हें हेटेरो एटम कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जब भी कभी किसी हाइड्रोकार्बन चेन में ये फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स को एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है जो उसको बाकी सारे हाइड्रोकार्बन से अलग बनाता है। हमने बात की थी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक ग्रुप है जो सिंगल एटम्स, सिंगल एलिमेंट से भी बना हुआ हो सकता है या फिर अलग अलग एटम्स से मिलकर के भी बना हो सकता है। और ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो हाइड्रोकार्बन को ये स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको भिन्न करता है, वो दूसरे कार्बन, दूसरे हाइड्रोकार्बन से उसको वो अलग बना देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता है, प्रॉपर्टीज उसको मिल जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस उसकी अलग हो जाती हैं। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन को स्पेसिफिक एक अलग प्रॉपर्टीज देता है जो उसको बाकी के हाइड्रोकार्बन से अलग बनाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को टेबल 4.3 पेज नंबर 66 पर दिए गए हैं, सच एज हैलोजन्स जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी के सभी हैलोजन्स होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल में अटैच्ड है। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से अटैच है, एक तो अल्कोहल में अटैच है, अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड है, अल्कोहल अनसैचुरेटेड नहीं होता है, सैचुरेटेड होता है। तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सैचुरेटेड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो दो ही वैलेंसी होती है, एक ऑक्सीजन OH ग्रुप का जो है उसमें ऑक्सीजन एक तो हाइड्रोजन से ऑलरेडी अटैच है, दूसरा वो कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा तो वहां पर सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, वो सैचुरेटेड होगा। इसी तरीके से एल्डिहाइड में आप देखो, एल्डिहाइड में कैसे है, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो होता है CHO ग्रुप, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और ये एक खुद फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड। इसी तरीके से कीटोन का भी दिया गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सिंगल लाइन आप लोगों को दिखाई गई है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई, ये क्या दर्शाती है, ये सिंपली उसकी फ्री वैलेंसी है, यानी कि इस जगह से ये फ्री है, किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको जब भी कभी जोड़ना हो इन फंक्शनल ग्रुप्स को कार्बन से तो आप यहीं से जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से कीटोन में दो फ्री वैलेंसी है, इसका मीनिंग है कि वहां से आपको दो कार्बन से एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कीटोन ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली अटैच हो पाएगा किसी हाइड्रोकार्बन चेन से। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में समझने के बाद में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ने लग गए थे, जो कि पेज नंबर 66 पर है टॉपिक। हमने यहाँ पर देखा था कि अलग अलग प्रकार के कार्बन के चेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकती है, लेकिन उनमें एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि सारे के सारे, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप है तो उसमें हम ये कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप है, भले उनकी चेन की लेंथ अलग है लेकिन ग्रुप तो हाइड्रोकार्बन्स का ही है। ऐसा इसलिए हम कह पा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की प्रकृति, उनका जो स्वभाव होता है वो सिमिलर होता है, जो बाकियों से उन्हें अलग बनाता है। तो होमोलोगस सीरीज को हमने इसी बात से डिफाइन किया था कि होमोलोगस सीरीज बेसिकली एक ग्रुप है, एक सीरीज है उन कंपाउंड्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है उनका वो सिमिलर होता है और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी सिमिलर होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इसीलिए उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की होती हैं, जो कि अलग होती हैं, बाकियों से अलग होती हैं। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स की खुद की भी होमोलोगस सीरीज होती है। इसी तरीके से मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए किसी हाइड्रोकार्बन से, तो वो फंक्शनल ग्रुप, सच एज मान लो फॉर एग्जांपल अल्कोहल अटैच हुआ है किसी फंक्शनल ग्रुप, किसी हाइड्रोकार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल है वो अटैच हुआ है, तो अगर वो मीथेन से अटैच हुआ है तो मीथेनॉल बनेगा जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा CH3OH, और नेक्स्ट जो उसका सीरीज का मेंबर होगा वो होगा इथेनॉल जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा C2H5OH, नेक्स्ट होगा प्रोपेनॉल जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H7OH, उसका नेक्स्ट होगा ब्यूटेनॉल जिसका फॉर्मूला है C4H9OH। तो इसमें जो अलग अलग मॉलिकुलर फॉर्मूलाज हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो है OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, और ये एल्कोहलिक ग्रुप सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स में सेम है। तो इससे क्या होगा कि सभी की सभी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी बिल्कुल, इसी वजह से हम इनको एक ग्रुप में रख सकते हैं जिसमें केवल और केवल एल्कोहल्स ही होंगे, और वो भी ये सारे के सारे एल्कोहल्स कैसे एल्कोहल्स है, सैचुरेटेड है, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसीलिए ये जो सैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं इनका खुद का एक ग्रुप बनेगा जिसको होमोलोगस सीरीज कहेंगे, क्योंकि इन सभी के चेन के फर्क नहीं पड़ता, चेन की लेंथ पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात पर पड़ता है कि इनका फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। उसके बाद हमने अपनी बात आगे बढ़ाई थी और कहा था कि होमोलोगस सीरीज केवल अल्कोहल्स का ही नहीं, ऐसा ही नहीं होता कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए तभी जा करके वहां पर वो होमोलोगस सीरीज बनेगी। हाइड्रोकार्बन्स की खुद की भी होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे कि अल्केन्स, जो अल्केन्स होते हैं उनमें भी जो सैचुरेटेड अल्केन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये अल्केन्स को बिलोंग करते हैं, तो अल्केन्स की भी खुद की एक होमोलोगस सीरीज होती है जिसमें सभी के सभी अल्केन्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जिसमें मेंबर्स जो सबसे पहला मेंबर है वो है CH4 यानी कि मीथेन, उसके अगला मेंबर है C2H6 यानी कि इथेन, उसके अगला जो है वो है प्रोपेन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8, इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके वहां पर जो अलग अलग मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज के वो वहां पर है। टेबल 4.2 में आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 64 पर है। उसके बाद यहाँ पर एक और बात हमने की थी कि मीथेन के बाद जो अगला मेंबर है इथेन, जस्ट नेक्स्ट मेंबर यानी कि इथेन, तो उन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम मीथेन यानी कि CH4 में एक CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट मेंबर, उसके जस्ट नेक्स्ट मेंबर यानी कि इथेन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये भी एक और डेफिनेशन है कि होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर होमोलोगस सीरीज का और उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर जो है होमोलोगस सीरीज का, ये दोनों आपस में एक CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। यानी कि पहले वाले मेंबर में अगर आप CH2 ऐड कर दें तो उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए अगर वो दोनों कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और CH2 में दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है तो 12+2 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस, यानी कि एटॉमिक मास का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, 14 का आना चाहिए। अब एटॉमिक मास से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एटम का जो मास होता है वो कितना है, तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो इसी हिसाब से CH2 ग्रुप का कितना होगा, कार्बन का 12 ऐड कर देंगे प्लस दो हाइड्रोजन जो है उनका ऐड कर देंगे तो टोटल 14 आ जाएगा। तो इसीलिए किसी होमोलोगस सीरीज में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, एक ग्रुप उसके नेक्स्ट ग्रुप जो है जस्ट नेक्स्ट ग्रुप उनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का आता है, तो इसीलिए एटॉमिक मास का जो डिफरेंस आएगा वो 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा। अल्केन्स की तरीके से अल्कीन्स का भी खुद का एक होमोलोगस सीरीज होता है, उसमें क्या होता है जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है C2H4, ये अल्कीन्स के लिए होता है। उसके बाद अल्कीन्स के नेक्स्ट मेंबर जो होता है वो प्रोपीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6, उसके नेक्स्ट होता है ब्यूटीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H8। उसके बाद हमने बात की थी कि अल्कीन्स में भी क्योंकि ये सारे के सारे सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं तो इनमें भी एक कंपाउंड और उसके जस्ट नेक्स्ट कंपाउंड जो है होमोलोगस सीरीज का, उनमें जो अंतर आएगा वो केवल CH2 ग्रुप का ही आएगा। साथ में मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्मूला भी बताया था, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एनी अल्कीन वो था CnH2n। इसमें आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू डालेंगे अलग अलग तो आप लोगों को होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर्स का पता चलते जाएगा। इसी में CnH2n में अगर आप सबसे पहला वाला मेंबर पता लगाना चाहते हैं तो आप n की जगह 2 डालिए, आप लोगों को पहला मेंबर पता चल जाएगा। उसका नेक्स्ट पता लगाना चाहते हैं तो n की जगह 3 डालिए, उसका अगला पता लगाना चाहते हैं तो n की जगह 4 डालिए। इसी तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, वैल्यू डालते जाइए, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज के मेंबर मिलते चले जाएंगे। सिमिलरली मैंने आप लोगों को अल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला बताया था जो था CnH2n+2, और अल्काइन्स का भी बताया था जो था CnH2n-2, और यही तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। देखो क्या होता है, किसी एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हैं, जिसकी वजह से उनके केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है जैसे जैसे हम नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। किस तरीके से फर्क पड़ता है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये मास पर डिपेंड करता है और साइज पर भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पर और साइज पर डिपेंड करता है। तो तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा या फिर मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज के पास जाते हैं तो मॉलिकुलर मास बढ़ता है क्योंकि चेन बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ दूसरे एटम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज में हर एक जो नेक्स्ट कंपाउंड होता है एक होमोलोगस सीरीज का वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है, यानी कि CH2 ग्रुप एटलीस्ट ऐड होता चला जाएगा हर एक होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर तक पहुंचने के लिए। तो जैसे जैसे CH2 ग्रुप ऐड होता चला जाएगा तो नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो हायर एटॉमिक मास का होगा, उसका मास ज्यादा होगा एटॉमिक मास, और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते चले जाता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती चली जाती है। सिमिलरली अगर साइज बढ़ता चला जा रहा है होमोलोगस सीरीज के अंदर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते हैं, तो जैसे जैसे अगले कंपाउंड पर जाते हैं एक होमोलोगस सीरीज में तो उसमें साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है सभी के सभी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का, इसीलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा जैसे जैसे एटॉमिक मास या फिर साइज बढ़ेगा। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी होती है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तो पता ही होगी। केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके होने पर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो वहां पर और कुछ केमिकल चेंज आए। हमारा जो कंपाउंड है अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उसमें कुछ केमिकल चेंज आना चाहिए केमिकल रिएक्शन होने पे, उस बारे में बात होगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो उसमें फिजिकल चेंज आते हैं, केमिकल चेंज नहीं आते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में बात की जा रही है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी कागज के बारे में बात करो, कागज आप लोगों ने प्लेन फैला करके रखा हुआ है, आप लोगों के पास एक प्लेन कागज है वाइट। अब आप उसको क्या करो, फोल्ड करके उसका साइज छोटा कर दो, फोल्ड कर करके या फिर काट के कैंची से उसका साइज छोटा कर दो। तो यहाँ पर जो साइज है वो एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उससे उसके स्वभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ा, छोटा कागज हो चाहे बड़ा कागज हो, कागज तो कागज होता है। अब आप क्या करो, कागज को जला दो, माचिस की तीली लो, उसमें आग लगाओ और कागज को जला दो। अब आपने कागज को जब जला दिया तो अब तो वो कागज कागज रहा ही नहीं, अब तो वो राख बन गया। तो जैसे ही आपने कागज को जलाया तो आप एक केमिकल चेंज ले आए, उसका स्वभाव ही पूरा बदल दिया। तो ये अंतर होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कि केमिकल चेंज अगर आप किसी सब्सटेंस का ले आते हैं तो उसका स्वभाव कम्प्लीटली बदल जाता है, अगर फिजिकल चेंज लाएंगे तो उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, बस उसका अपीयरेंस बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी भी होती है कि कोई सब्सटेंस कितना अच्छे से घुल रहा है किसी सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी किसी होमोलोगस सीरीज के मेंबर की किसी सॉल्वेंट के अंदर डिपेंड करती है कि उसका साइज कितना बड़ा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर होमोलोगस सीरीज के मेंबर का साइज बढ़ने के वजह से प्रभाव पड़ता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी पर साइज बढ़ने के वजह से प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सिमिलर रहती हैं। उसी से हम जज करते हैं कि कोई कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं या नहीं, क्योंकि उनके केमिकल जो रिएक्शंस होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए, राइट? तो ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की फॉर अ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर एक्टिविटी 4.2 समझनी है जो कि पेज नंबर 67 पर है। ये बहुत इजी एक्टिविटी है, अगर आप लोगों को अब तक की मेरी बात समझ में आई होगी तो आप बहुत इजीली ये एक्टिविटी कर पाएंगे, एक्टिविटी 4.2। इस एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को कुछ मॉलिकुलर फॉर्मूलेज दिए हैं और आप लोगों को ये बताना है, आप लोगों को ABCD करके दिए गए हैं अलग अलग पार्ट्स और इसमें आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स के मॉलिकुलर फॉर्मूले दिए हैं। इसमें पूछा है कि जो ए पार्ट है उसमें दो मॉलिकुलर फॉर्मूले दिए हैं CH3OH और C2H5OH, आपको बताना है कि इन दोनों में अंतर कितने का है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो फर्क आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है, माइनस करके देखो आप देखोगे कि C2H5OH में 2 कार्बन है और हाइड्रोजन्स कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन्स की संख्या है C2H5OH में 6 और एक ऑक्सीजन है। और अगर CH3OH की बात करें तो इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो आप, C2H5OH से CH3OH सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, C2 है तो 2-1, CH3OH का C माइनस करेंगे तो 1C आ जाएगा, एक C अलग कर लिया। C2H5OH में 6 हाइड्रोजन है तो 6-4, ये 4 कहाँ से आया, ये 4 आया CH3OH जिसमें कि 4 हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन माइनस करो, कार्बन में से कार्बन माइनस करो और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको लास्ट में रिमेनिंग मिलेगा CH2। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि CH3OH और C2H5OH जो हैं ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। साथ ही में ये भी आपको समझना है कि CH3OH के जस्ट नेक्स्ट मेंबर जो है वो है C2H5OH, क्योंकि एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो CH2 ग्रुप का आता है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग समझ में आता है आप लोगों को, कंसेक्यूटिव का मीनिंग है जस्ट नेक्स्ट। से अगर CH3OH होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर है तो उसका जस्ट नेक्स्ट जो मेंबर होना चाहिए वो C2H5OH होना चाहिए, बिकॉज अगर हम CH3OH में CH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं तो हमको C2H5OH ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सिमिलरली बी पार्ट आप देखो, उसमें आप लोगों को दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए गए हैं, एक दिया है C2H5OH और दूसरा दिया है C3H7OH। अब फिर से वही करो, C3H7OH में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8 है, ऑक्सीजन 1 है। सिमिलरली जो C2H5OH है उसमें देखो उसमें कितने कार्बन एटम्स है, 2 है, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6 है और एक ऑक्सीजन है। अब कार्बन से कार्बन को माइनस करो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को माइनस करो तो C3-C2, 1C विल बी लेफ्ट, और C के बाद हाइड्रोजन पे अटैक करो तो हाइड्रोजन जो होंगे 8 हाइड्रोजन माइनस 6 हाइड्रोजन, कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो बी पार्ट है उसमें भी हम लोगों को होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स दिए गए हैं और उसमें से भी C2H5OH जो मेंबर है उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर जो है वो कौन है, वो है C3H7OH। वाई, बिकॉज ये दोनों जो है वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। C2H5OH में अगर हम CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो हमें ऑटोमेटिकली C3H7OH ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, इसमें आप लोगों को दिया गया है C3H7OH और C4H9OH। तो आप लोग देखो अगेन इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो, जो C4H9OH है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं और ऑक्सीजन 1 है। सिमिलरली जो C3H7OH है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8 हैं, ऑक्सीजन 1 है। अब सब्ट्रैक्ट करो कार्बन को कार्बन से, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से तो C4-C3 होगा, 1C विल बी लेफ्ट और हाइड्रोजन जो होंगे वो 10 हाइड्रोजन माइनस 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से माइनस हो जाएंगे, 0 ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट। तो जो लेफ्ट बचेगा, जो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग, वो CH2 ग्रुप होगा। अगेन दिस प्रूव्स कि C3H7OH और C4H9OH सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं और उसमें से भी C3H7OH का जस्ट नेक्स्ट मेंबर जो है वो है C4H9OH। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को एक होमोलोगस सीरीज दी गई है जिसमें आप लोगों को नेक्स्ट उसके नेक्स्ट उसके नेक्स्ट उसके नेक्स्ट करके 4 मेंबर्स तक बताए गए हैं। सबसे पहला मेंबर जो है वो है CH3OH, उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर है C2H5OH, उसका जस्ट नेक्स्ट मेंबर है C3H7OH और उसका नेक्स्ट मेंबर है C4H9OH। तो यहाँ पर आप लोगों को एक सीरीज दी गई है अल्कोहल्स की, सैचुरेटेड अल्कोहल्स की। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी में क्या कोई सिमिलैरिटी है तो आप कहेंगे कि इन जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, A, B, C पार्ट जो दिए गए हैं, इसमें सिमिलैरिटी ये है कि सभी के सभी जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दो दो दिए गए हैं एक एक पार्ट के अंदर, A, B, C के अंदर जो दो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हैं, दे डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो मॉलिक्यूलर मासेस का अंतर आएगा वो कितने का आएगा, वो 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो आप लोगों को अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज दिया गया है, आप लोग खुद का होमवर्क आप लोगों को आज का दिया जा रहा है कि टेबल 4.3 में आप लोगों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं, जिनमें से एक फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल, जिसकी होमोलोगस सीरीज आप लोगों को यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, आपको होमोलोगस सीरीज तैयार करनी है फॉर हेलोजेंस, फॉर एल्डिहाइड्स, फॉर कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो आप लोगों को रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं, सभी के होमोलोगस सीरीज घर पर बैठ करके होमवर्क करिए और तैयार करके रखिए। ये आप लोगों की आज की क्लास की होमवर्क है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए कि होमोलोगस सीरीज कैसे बनाते हैं। आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहला मेंबर लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर ऐड करने के लिए आपको CH2 ग्रुप ऐड करना है, उसका नेक्स्ट लाना है तो फिर से CH2 ऐड करना है। इसी तरीके से आप लोगों को एक होमोलोगस सीरीज तैयार करनी है फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप जो आप लोगों को टेबल 4.3 में दिया गया है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, पेज नंबर 67 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को 11th में भी आएगा काम, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। नोमेनक्लेचर का मीनिंग है हम लोगों को यहाँ पर नाम रखने हैं, जो कार्बन कंपाउंड है वो आप लोगों को दिए गए होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके आप लोग उसका स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, लेकिन आप लोगों को नाम रखना अभी नहीं आता होगा, तो वो नाम रखना हम यहाँ सीखेंगे। जब भी कभी किसी कार्बन के कंपाउंड का हम लोगों को नाम रखना होता है, तो उसमें सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि उसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसी आधार पर हम उसका वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। वर्ड रूट क्या होता है, आप लोगों ने सभी में देखा होगा, जितने भी आप लोगों ने अभी तक कंपाउंड्स पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ के नाम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि मीथेनॉल और इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि लास्ट में ऑल 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 तो सब में सेम है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है इनमें सभी में अटैच है। इनमें डिफरेंट क्या है, मिथ डिफरेंट है, नेक्स्ट वाला जो है उसमें इथ लिखा हुआ है, उसके अगले में प्रोप लिखा हुआ है, उसके अगले में ब्यूट लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या समझना है, ये जो है मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूट, इसे वर्ड रूट कहते हैं। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लोगों को कंपाउंड का है उसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये देख करके हम वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। और ये फिक्स्ड होता है, अगर एक कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर आप तो उसका वर्ड रूट लिखेंगे मिथ, उसका मिथ होता है, ये याद कर लो। एक टेबल बनाओ और उसमें लिख करके रख लो, पेंसिल से लिख लो, पेन से लिख लो, आप जहां पर भी रिविजन करते हो वहां पर लिख लो। और क्या करो, आप सबसे पहले लिखो वन, अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स वन होंगे तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, वो होगा मिथ। नेक्स्ट अगर कार्बन जो होंगे उसके नंबर ऑफ एटम टू होंगे तो उसका वर्ड रूट होगा इथ, ETH। उसके अगला अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे थ्री तो वर्ड रूट होगा प्रॉप, PROP। उसके अगला अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे चार तो होगा वर्ड रूट ब्यूट, BUT। उसके अगला अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे पांच तो उसमें वर्ड रूट होगा पेंट, PENT। उसके अगला अगर वर्ड रूट आपको लिखना है सिक्स कार्बन के लिए तो उसका होगा हेक्स, HEX। उसके अगला अगर सात होंगे कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स तो उसमें होगा वर्ड रूट हेप्ट, HEPT। उसके अगला अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे आठ तो उसका वर्ड रूट होगा ऑक्ट, OCT। नेक्स्ट अगर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे नाइन, तो अगर नाइन कार्बन एटम्स होंगे तो उसका वर्ड रूट होगा नॉन, NON। तो यहाँ पर ये जो वर्ड रूट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लो वर्ड रूट अलग अलग जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके लिए। और जब भी कभी हमें किसी कंपाउंड का नेमिंग करना होता है तो सबसे पहले हम लोग को यही चेक करना होता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और उसी हिसाब से हम वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट के अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जो वर्ड रूट के पहले आएगा उसका नाम, तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कि वर्ड रूट के पहले आ रहा है वो, फ्रेज बिफोर, यानी कि वर्ड रूट के पहले आ रहा है। और अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जिसका नाम हमें वर्ड रूट के बाद लिखना होता है तो वो सफिक्स में आता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड रूट, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम देखते हैं। और ये चेक करते हैं कि इसका नाम जो है वो प्रीफिक्स में आना चाहिए कि सफिक्स में आना चाहिए। सफिक्स मतलब बाद वाला, प्रीफिक्स मतलब पहले वाला। तो देखो, आप लोगों के स्टैंडर्ड तक, टेंथ क्लास के बच्चों तक अगर हेलोजन दिया हो, कोई हेलोजन दिया हो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन, तो अगर हेलोजन्स दिए हैं तो हेलोजन्स जो होते हैं इनके नाम हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, वर्ड रूट के पहले आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई अल्कोहल दिया हो, अल्डिहाइड दिया हो, कीटोन दिया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड दिया हो, तो ये सभी के सभी सफिक्स में आते हैं, एंड में आते हैं, वर्ड रूट के बाद आते हैं। तो अभी क्या करो, अभी तो आप लोगों को इतना ही समझ लेना है, बाकी पूरा डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है। अभी फिलहाल आप लोगों को जो टेबल बताया गया है जिसमें आप लोगों को वर्ड रूट्स याद रखने हैं वो याद कर लो, और ये समझ लो कि जब भी कभी हम हेलोजन्स की नेमिंग करते हैं और हेलोजन अटैच होता है किसी हाइड्रोकार्बन में, तो वो कहाँ आता है, वो हमेशा प्रीफिक्स में आता है। और अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन और अल्काइन, ये जो होते हैं ये सफिक्स में आते हैं। बाकी और भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्रीफिक्स में आते हैं, सच एज नाइट्रो, NO2 ग्रुप जो होता है ये हमेशा प्रीफिक्स में आता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, वर्ड रूट आप लोगों को पता चल गया, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे कि कोई कंपाउंड अगर दिया हो, हाइड्रोकार्बन दिया हो, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको आज का होमवर्क तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, होमोलोगस सीरीज बनाने हैं आप लोगों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के, और साथ ही में जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज भी कर लेना, जो वर्ड रूट्स दिए हैं उन्हें याद कर लेना, और क्या करना, नेक्स्ट क्लास में मिलना, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।